तो जन जनों में आप जैसे ऋषिकेश के भक्तों का प्रचुर समागम नहीं है, उस जन्म से क्या लाभ? मतलब जीवन का सबसे बड़ा लाभ है महात्माओं का संग। सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसी शरीर में भगवान के भक्तों का संग हो सकता है, प्रचुर संग हो सकता है, और दो लोक में प्रचुर संग नहीं होगा। भोग भी हो तो बस हरे कृष्ण आप अपने काम में हैं, अपने काम में हैं, उतने इतना काम है उतना अपने की कोई फुर्सत नहीं है। हरे कृष्ण हमारा थोड़ा अपॉइंटमेंट है, अभी फोन करना हमारा है, अभी हमारा काम बाकी। तो दूसरे के लिए तो भागवत बीत ही रहेगा, तुम्हारा फोन तो रहेगा ही साल भर, है कि नहीं? तो करना है। लेकिन दो लोक में महात्माओं का संग प्रचुर नहीं मिल जाता है। इस लोक में भी जो देवता के पोजीशन पर होते जाते हैं उनको कम फुर्सत होती है। जो कुछ हायर होते जाते हैं उनको लोअर टाइम मिलता है कृष्ण कथा का, वो कम टाइम होता है। और मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है। ऋषि किस जश कृपा की ऋषिकेश जैसा कृत मैंने शोधित महात्माओं का विशेषण है। महात्माओं का जो हृदय होता है वो ऋषिकेश के समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्रीकृष्ण के यश से, उनकी लीलाओं से शोधित होता है, शुद्ध होता है। मतलब भगवान की लीला के अलावा उनके हृदय में और कुछ रहता नहीं, शोधित है, पवित्र हृदय। ऐसे महात्माओं का प्रचुर सूर्य जो जन्मों में नहीं हो, ऐसे जन्मों से क्यों क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। राजा रहो रहे का विचार है कि मनुष्य जन्म ही सुंदर है, जहां महात्माओं का संग प्रचुर मात्रा में करने का अवसर है, होता है। अपने भक्तों के इंद्रियों को खींचे रहते हैं भगवान, अपने जस को उनके हृदय में भरे रहते हैं, इसीलिए यहां पर ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम अगर कृष्ण का भजन करते हैं तो कृष्ण स्वयं ही हमारे इंद्रियों को खींच लेते हैं, तो उनका आकर्षण स्वभाव। जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में ऐसा आकर्षण नहीं होगा अपने को खींच ले, वो दूसरे में आकर्षण नहीं है। लेकिन हम अगर कृष्ण को समर्पण करते हैं तो कृष्ण हमारे नेत्र को, कान को, मन को अपने आप खींच लेंगे, इतने दयालु है, इतने सुंदर है। तो ऋषिकेश जश प्रताप मना महात्मा यही है जिसका हृदय ऋषिकेश के यश से शोभित हो चुका है, भर गया है जस। मतलब उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनकी दासरी, उनका मंजूर, उनका मूर्ख, उनका पीतांबर, उनकी गोचारण लीला या गिरवर धारण लीला या रस लीला, काली तपन लीला, तो उनके यश से ही उसका मन भरा पड़ा है। और ऐसे महात्माओं का संग जहां प्रचुर मिले तो वास्तव में मनुष्य शरीर ही अधिक सराहनीय। मनुष्य शरीर दुर्लभ है केवल भजन करने के लिए, नहीं तो ऐसे तो कोई दुर्लभ है नहीं। ये तो फालतू मनुष्य शरीर मिल ही रहा है सबको, यह केवल श्रीकृष्ण का यश सुनने के लिए है, गाने के लिए। तो इस पर मानव जब भरज कहते हैं कि तो आप प्रचुर सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं, महात्माओं का थोड़ा सिंह क्या महत्वपूर्ण ही है? अपनी भूल को सुधार रहे हैं। मैं उनको आदमी कि महात्माओं का प्रचुर संग मिलेगी बहुत अच्छा। तो प्रचुर का अर्थ होता है बहुत अधिक। जब घर जी कहते हैं तो भक्तों का थोड़ा संग महत्व नहीं रखता है क्या? तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूं कि जहां थोड़ा संग भी इतना प्रभाव डाल सकता है तो फिर प्रचुर संग का तो कहना ही क्या। वो कह रहे हैं कि मोर जैसा कुतार्किक व्यक्ति भी आपके थोड़े से संग से बदल गया और हमारी मूर्ति भगवान में लग गई तो फिर आपका आपके चरणों का सेवन यदि बुद्ध काल तक किया जाए तो भगवान श्रीकृष्ण में प्रेम हो जाए, कौन आश्चर्य की बात? कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्षण भर के संग से मेरा अविवेक अपहत नष्ट हो गया, नुतम तत्चरण हो हता वसे भक्त रोमला महूर्त का जैसे समागमार्थ में दिखकर कमी में पहते विवेक तत्चरणा जरूर हो आपके चरण कमल के वेण द्वारा धूलि द्वारा स्वयं द्वारा यदि किसी भक्त का पाप दूर हो जाए हता हो सब तो अभोक्षण निर्मला भक्ति नहीं अद्भुत उसके भगवान कृष्ण अद्भुत भगवान में भी निर्मल भक्ति हो जाती है निर्मला समस्त कामना शून्य शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है कोई आश्चर्य की बात नहीं मैं आपका कोई सेवन करे आपकी सेवा करे तो उसकी भगवान कृष्ण में भक्ति हो जाएगी प्रेम हो जाएगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मैंने प्रकट देख लिया कि मैं आपका पूरा सेवन किया थोड़ा संग किया और वह संग भी वे कितने गलत तरीके से सेवा की जाए दीन भाव से आपकी शरण ली जाए तो क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न हो सकता मुहूर्तिक जस समागमात जिनको मुहूर्तिक संग से मुहूर्त मात्र के संग से डिस्टर्क मन अविवेक अपहत हमारे मन में जो डिस्टर्क चल रहा है तर्क मन करता है वचनवाणी बोलती है मन में बहुत बहुत बातें उठती रहती है उसको तर्क कहते हैं चाहे वह अच्छा तर्क हो या बुरा तर्क हो तो मन में उठती रहती है बात उम्र कुछ तर्क ही मन की जो जुक्तियां थी उसी से हमारे भीतर अभिभूत पैदा हुआ था मैं उस शरीर को मैं मान रहा था वो सब चला गया और अंत में अब डर गए थे मैंने सोचा कि पता नहीं ब्रह्म देवता पुरुष किस रूप में घूमते रहते हैं भगवान को जानने वाले कृष्ण तत्व होता पता नहीं कब किस देश में घूमते रहते हैं और पता नहीं उसके पहले भी मेरे गया कोई अपराध हुआ होगा कोई ऐसे बच्चा के रूप में घूम रहा होगा कोई युवक के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में हाय भगवान पता नहीं मैं कितना अपराध किया होगा और आगे भी हो सकता है तो इस तरह राजा लोग तो प्रेह डांट डपट करते ही रहते हैं पता नहीं किसी भक्त का डांट डपट किए होंगे क्या किए होंगे तो इसलिए जो भी अपराध हुआ होगा या आगे हो सकता है भूल से हो जाए तो समस्त ब्राह्मणों को ब्रह्मदेवताओं को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हंत हंत सिविका वाहन गहन तत्र भवन स्वयं यदि नाज्ञात सदा ममापराधना का गति रहे विश्वदीति सभवन प्रणनति फिर कह रहे हाय हाय मैं सिविका आपसे ढुला रहा था सिविका बहन करते समय यदि आप स्वयं ही अपने बारे में नहीं बताए होते यदि ये ज्ञान की बातें आपके मुख से नहीं निकली हुई होती तो हाय मेरी क्या गति होती मैं किस घोर नरक में गिरता तो आपने मुझे बचा लिया कृपा करके मैं तो आपसे पूछना नहीं गया जिज्ञासा करने नहीं गया उल्टे आपके कंधे पर पालकी चढ़ाया चढ़ाता ऊपर से आक्षेप किया हाय हमारी क्या गति हुई होती आप कृपा करके यदि नहीं बोले होते तो मेरा कभी निस्तार नहीं हुआ होता मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं इसलिए मैं आपको और आप ही के समय मान्य सभी ब्रह्मदेवताओं को प्रणाम कर रहा हूं बार बार डर करके प्रणाम कर रहा हूं रो करके चरण छो छो कर प्रणाम कर रहे हैं नमो महादेव तो नमो से सिद्धे नमो महादेव जो महान पुरुष हैं वृद्ध हैं उनको नमस्कार कर रहा हूं पता नहीं भगवान के भक्त किस वेश में रहते हैं वृद्ध भी भक्त हो सकते हैं शिशु भी भक्त हो सकते हैं तो नमो महाद्वैत वृद्धों को प्रणाम है नमो शिशुद्वैत यदि कोई ब्रह्म होता है कृष्ण तत्व होता है तो बच्चा भी है तो मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं कभी बच्चों के प्रति अपेक्षा होती है ये किसी काम का नहीं होता तो भगवान के पार्षद भी बच्चा समझ कर चार कुमारों को निकाल देगा हटो गया तो घूम रहे बड़े कौन उठने में भगा दिए कपड़ा नहीं पहने तो छोटे छोटे बच्चे तो कहे हटो इधर भगवान को डिस्टर्ब मत करो चाहे नहीं पहचान पाए इसीलिए राजर्षि रहु रंग डर रहे हैं नमो ऐसी सिद्ध यदि कोई बच्चा भी है और भगवान का कृष्ण भगवान कृष्ण का भक्त है तो मैं उसे प्रणाम करता हूं। सीखना चाहिए खास करके अधिकारियों को राजाओं को, नहीं तो बहुत अपमान करते हैं। पता नहीं आज ही उसका ज्वाइन किया हो, बच्चा है कोई, तो हो सकता है भक्ति में हमसे बढ़ करके हो, पहले का जो भ्रष्ट हो सकता है, हो सकता है कोई राजर्षि भरत रहा हो और वीर ब्राह्मण के यहां जन्म लिया या कहीं जन्म लिया, कोई पता नहीं। इसीलिए सबसे हाथ जोड़े रहना चाहिए, किसी का अपराध न होने जाए। कभी कभी लोग इस तरह अपराध करते हैं, आज का ज्वाइन किया है इसका, मैं आज का नहीं ज्वाइन किया, हो सकता है पहले का जो भ्रष्ट रहा। इसीलिए दूर रहना, अपना बते सुनो चेना, यही सबसे अच्छा है, अपराध नहीं होने पाएगा। तो शिशु हो चाहे वृद्ध हो या नमो जीव्यो या ज्योत है, इसको प्रणाम है, शिशु को प्रणाम है, वृद्धों को प्रणाम है, युवक को प्रणाम है, आदित्य ब्रह्मचारियों को प्रणाम है, छोटे छोटे ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारियों को प्रणाम है, गृहस्थों को प्रणाम है, सन्यासियों को प्रणाम है, वानप्रस्थियों को प्रणाम है, जो ब्राह्मणा दान अवधूत वेशा चरण की लिंग अवधूत लिंग चरण की तेभ्य सीमस्त राज्य। पता नहीं ब्राह्मण किस किस भेष में चला करते हैं। हाय हाय, यदि आप स्वयं नहीं बताए होते तो मैं कैसे आपको पहचानता। जब भरत यदि स्वयं बोले नहीं होते तो राजा लोग कैसे पहचान पाते। तो इसको कहते हैं अवधूत लीला, अवधूत वेश में ब्राह्मण और भगवान के भक्त घूमते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान, राजाओं के अपराध से तीनों ब्राह्मणों के अपराध से राजाओं की रक्षा कीजिए, राजाओं का कल्याण है। ज्यादा अपराध राजा करते हैं, अगर राजा नहीं होते तो पालकी पर चढ़ते नहीं, और चढ़ने पर भी पालकी हिल गई होती, राजा नहीं होते तो जाटते नहीं। राजा पना का अभिमान बहुत दुख में डाल देता है। राजाओं का सिर नष्ट कल्याण हो, उन ब्राह्मणों से भक्तों से राजाओं का कल्याण हो, मतलब राजा अपराध न करने पाए। समस्त छोटे छोटे राजाओं को सीखना चाहिए इस उदाहरण से। तीन उत्तरा माता सवेद नर्षि सुतः सिंह पत आप सतत्यम जीवन अपराधुभाव परम कार्य दृश्य रहूगन सकर्ण अभिबंधित चरण आपूर अरण्य निभृत कर्णभ्य कर्णम आशय धरणी नाम विचार। हम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तरा माता संबोधित कर रहे हैं। उत्तरा माता जस्य, वह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित रहे करके सौभाग्य को देख करके सुख से बिहेल हो गए, अपने दुर्भाग्य से, उनके सौभाग्य से नहीं। तो राजा कहते हैं हम तो महाभूरी भाग रहे गए महाभाग्यशाली हैं, जो तादृश ब्रह्म तेजस्वी सिविका वाहन वाहना अपराधों की, जो बहुत अपराध किए, सिविका पर चढ़े, इनके कंधे पर सिविका रखे, बहुत कठोर वचन बोले, फिर भी जब भरत जी ने इनको अपने अनुग्रह रूपी अमृत से सींच दिया, लेकिन मैं अति मंद भाग्यशाली हूं कि भूख से व्याकुल होकर मैं ब्राह्मण के गले में सांप डाला, बहुत थोड़ा अपराध किया था, मरा हुआ सांप डाला था, लेकिन उस सांप डालने के अपराध से मुझे 7 दिन में मरने का शाप मिला, ब्राह्मण के शाप से मैं मरने जा रहा हूं। हाय हाय, मेरी क्या गति होगी, धन्य है राजा रघुगण, मैं तो बहुत पापी हूं, बहुत अपराधी हूं, ब्राह्मण मुझे क्षमा ही नहीं कर सका, इनको तो क्षमा भी हो गया, ऊपर से ज्ञान मिला, भक्ति मिली, ये धन है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं उत्तरा माता जस्य, अरे परीक्षित, तुम्हारी मां के गर्भ में जाकर भगवान ने तुम्हारी रक्षा किया था, तुम अपने सौभाग्य को क्यों नहीं देखते, और ब्राह्मण साथ दिया तो इससे क्या हुआ, हमारे हृदय में प्रेरणा देकर के भगवान श्रीकृष्ण तुमको भागवत अमृत पिला रहे हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य, तो सारा प्रसंग तो तुम सुन ही रहे हो, तो तुम्हारा सौभाग्य है। और मैं तो ये कहता हूं कि तुम नारद मुनि से, व्यास देव से, हम से, राजा रघुवंश से या जटभरत जी से सबसे अधिक सौभाग्यशाली ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उत्तरा माता से। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत सौभाग्यशाली। तो इस प्रकार से संबोधन करके कहते हैं कि वो पुराण भाव से ब्रह्मर्षि सुपर है, वे ब्रह्मर्षि तनय जटभरत जी महान अनुभव वाले, अनुभव करके भक्ति, ये महान भक्ति है, ज्ञान है। विगलता सिंधु कहते जो उनका अपमान किया था उस सिंधु पति को, रहुगण को परम कारुणिकया परम करुणा से स्नेह से इस प्रकार कह करके आत्म तत्व का उपदेश करके और रहुगण द्वारा बंदित होकर के चले गए। रहुगण सकरुण में भी बंदित चरण, रहुगण सकरुण सस्नेहम सर्वगुण यथा भौतिक तथा अभिबंधित चरण। जलभरत जी ने कहा कि अच्छा रहुगण अब मैं चलता हूं, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं कहा जलभरत जी ने कि अच्छा राजा रहुगण तुमको मैं ज्ञान दिया और अब मेरे कुछ बाकी है, 10 लाख का चेक काट दो और जाओ, अब हमारा भी काम हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलता हूं, तो जब चलने के लिए तैयार हुए तो राजा रहुगण रोने लगे। जैसे परम श्री हनुमान पिता के पास से पुत्र विदा हो रहा है तो उस तरह से रोने लगे, अपना अपराध याद आ रहा बार बार, हमने क्या किया है इनके साथ और इन्होंने कितनी कृपा किया। तो सकरुण ससिंहम सर्वगुण वंदित चरण, इनके चरण की वंदना की शिक्षा उस समय महाराज रहुगण रो रहे थे, सूर्य के कारण रो रहे थे। और जब भरत जी ने अपना वर्तमान उद्देश्य नहीं बताया कि मैं किस गांव का हूं, कहां कहीं नहीं, तो फिर ये संवाद फैल गया था दुनिया में, बहुत लोग आया करके भीड़ करके डिस्टर्ब कर कोई पता नहीं बताए और वो चले गए। वो इच्छा होती कि राजा का सन करके भी इससे कुछ लेने की इच्छा उनको क्यों नहीं हुई, तो कहते आप पूर्ण पारण लिया आम सैन्य पूर्ण पारण, जैसे किसी समुद्र में जल भरा हुआ पार, इस तरह से जब भरत जी ने अनंत सुख भरा हुआ भगवान के हृदय में, तो पूर्ण समुद्र की तरह थे, उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं थी, केवल चाहे निवृत्त करण मिला से उनकी इंद्रियों में सुख था, आसर सुख था, भगवान भरे हुए थे, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी मान सम्मान नहीं, तीनों धर्म विचार। और फिर जैसे पहले थे ऐसे धरती पर घूमने लगे, कहां गए कहां जा रहे हैं राजा रघुवंश सिंह नहीं बताए, नहीं बताएगा हमारा वहां पर प्रोग्राम होने वाला है, आना वहां ज्वाइन करना है, करना हो करना है, सो गए। और जीवन में बस इतना ही बोले से बोले नहीं है और किसी से योग्य अधिकारी मिला। कभी प्रश्न होता है कि राजा रहुगण पर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या किए, तो कहते सौवीर पति अपि, सौवीर पति अपि का अर्थ है जो जगभरत जी ने गुण था जो वर्णन किया गया, सौवीर पति भी वैसे ही हो गए, वो भी आपूर्ण अवनयी, वो भी ठीक वैसे हो गए। ऐसा कहा गया है कि पारस पत्थर स्पर्श मणि में और साधु में बहुत अंतर रहता है, स्पर्श मणि लोहे को सोना बना सकता है लेकिन लोहा का स्पर्श मणि नहीं बना सकता, ये साधु जो है किसी को अपने समान बना देता है। पारस पत्थर नहीं बना सकता है लोहा को, लेकिन साधु तो अपने समान साधु किसी को बना देते हैं। तो अपि शब्द बता रहा है कि जैसे जट भरत जी है वैसे राजा रहुगण हो गए, देखिए क्षण में वैसे कोई भी हो रहा है, दो आत्म बुद्धि थी सत्यष्ट था लेकिन क्षण में दूसरे जट भरत हो गए। सृजन समावर्त परमात्म स्वतत्व, इस सृजन से सज्जन से महात्मा से भगवान श्री कृष्ण का तत्व उन्हें प्राप्त हो गया और आत्मनिर् अविद्या अध्यारोपिता जो देहात्मति विसर्जन, और ज्ञान से जो देहात्म बुद्धि थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, देहात्म बुद्धि खत्म हो गई और वे भी इसी तरह से धारण विचार घूमने लगे और वो सिंधु समुद्र नहीं लौटे। राजापना का अभियान खत्म हो गया और अविनाश भोगरे गए नहीं, उन्होंने सुना कि जो हरिण में असक्त होकर के हरिण हो गए थे तो अब मैं क्यों राजा बनने जाऊं, अविनाश हो जाएगा। तेरह महीने तो भगव दास पास का अनुभव राजा चकित हो गए परीक्षित महाराज। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजू, यही तो भगवत आश्रित के आश्रित का प्रभाव है। भगवत आश्रित कौन है? जड भरत जी, और उनके आश्रित रहुगण। भगवान के भक्त का आश्रय लेने पर यही प्रभाव होता है, यही प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं साधु संघ। ये भी दूसरे जड भरत हो गए, पूरा मुक्त पूरा सुखी हो गए। हमारा परिचित पूछेंगे कि मैं इसका अर्थ नहीं समझा भवाटवी का, सुखदेव गोस्वामी से इसको कृपया खोल कर बताइए, तब आगे प्रारंभ किया जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री
भागवत परमहंस जगभरत जी के अत्यंत प्रभावशाली वचनों को सुनकर सौगुणपति रहुगण भी परमहंस हो गए, इसीलिए यहां अपि शब्द का प्रयोग किया गया। जो स्थिति जगभरत जी की थी वही स्थिति जड भरत जी के संग से राजा रहुगण की भी हो गई। तो वे उनसे भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके और अपना स्वरूप समझकर अविद्या से जो आरोपित देहात्मति थी उसको त्याग दिए। विश्व देह में आत्मबुद्धि यह अविद्या से होती है। अविद्या का अर्थ होता है न ज्ञायते जया इति अविद्या, जिसके चलते हम किसी वस्तु को नहीं जान पाते हैं उसको अविद्या कहते हैं। अनादिकाल से जीव इस जगत में अपने स्वरूप को भूल गया है और जो उसका स्वरूप नहीं है उसी को मैं मानता है। अविद्या के पांच फेज हैं। जब ब्रह्मा जी इस जगत का निर्माण करने लगे, निर्माण करने के पहले वे पांच प्रकार की अविद्या बनाए जिससे सभी जीव अज्ञान में रहे। बिना अज्ञान में रहे उनकी सृष्टि ठीक से चल नहीं सकती। जैसे मान लीजिए यदि माता में अज्ञान न होती है बेटा मेरा है तो कैसे पालन करेगी? ज्ञान हो जाने का खतरा है। इसीलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले अविद्या की सृष्टि की। इसको पंच पर्वा अविद्या कहते हैं। भागवत के तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन पांच प्रकार की अविद्या की सृष्टि की है। तो प्रथम अविद्या को तो अविद्या कहते ही है। उसको अविद्या का अर्थ अपने स्वरूप की नहीं जानकारी, और दूसरी अविद्या हुई अस्मिता, मैं हूं, क्या हूं, मैं देह हूं, अपने को भूल जाना ये पहली अविद्या हुई। और दूसरी अविद्या हुई जड़ पदार्थ में अहम बुद्धि, इसको अस्मिता कहते हैं। और इसके बाद राग, जब देह में अहम बुद्धि होती है तो देह के संबंधी लोगों में या वस्तुओं में मन बुद्धि होती है, वो राग कहते हैं। और राग जहां होता है तो चौथी अविद्या की सृष्टि हुई द्वेष। तो द्वेष भी अविद्या है, यह अविद्या के कारण होता है। हमको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, किसी को अपना समझना और किसी को पराया समझना, तो द्वेष। और पांचवी अविद्या है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है कि बिल्कुल खो जाना इसी राग द्वेष में, देह सपने में ही पता न चले कि मैं देह से पृथक हूं, जो अभिनिवेश करते। कभी इस जीव को पता नहीं चल रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मैं दूसरा अभिनिवेश। उसे देहात्म बुद्धि के अनुसार काम करता है, राग से या द्वेष से प्रेरित होकर के काम करता है, इसको अभिनिवेश करते। तो ब्रह्मा जी ने पांच प्रकार की अविद्या की सृष्टि की। इस जगत को स्नेह की डोरी में बांध कर रखने के लिए। लेकिन प्रश्न होगा कि देश की सृष्टि क्यों की है, इससे कैसे काम चलेगा। देश भी एक आवश्यक चीज है विद्या इस संसार में, जीवों को ठीक से कंट्रोल में रखने के लिए। जो भी हो, इस तरह जीवों के स्वरूप का ज्ञान हर कर ब्रह्मा जी ने तो पहले से ही हरा हुआ था, ऊपर से उन्होंने ये चादर उड़ा दिया ज्ञान। और जो भी जीव उत्पन्न होता है तो सोचता है ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये है वो है, इस अविद्या का है। तो अविद्या के कारण अध्यारोपिता देहात्मति देहे आत्ममति देहात्ममति देह में आत्ममति विशेषर्ज। ये फिलोसफिकल शब्द हैं, बड़े सुंदर। देहात्मति, देहाभिमान, देहाहंकार, देह को मैं मानना देह। एक बार मैं देहात्मति छोड़ने की कथा कह रहा था गांव में, तो एक व्यक्ति समझ नहीं रहा था, वो देहात शब्द सुना था तो खड़ा होकर प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे हैं आप ज्ञान केवल देहात में है, शहर में नहीं है। मैं तो मुग्ध हो गया, बहुत भक्त भरे पड़े थे और वहीं पर प्रश्न किया। समझाया कि नहीं, देहात नहीं कह रहा हूं, देहात्म कह रहा देह में आत्मबुद्धि। ऐसे ऐसे कथा सुनने वाले हो जाते। सुनकर आश्चर्य हृदय पर मैं कथा कह रहा था कि ईश्वर इस जगत में सभी वस्तुओं की सप्लाई किए हैं सबके हिसाब से, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ ज्यादा ले लेते हैं तो किसी को घट जाता है। मैं उदाहरण दिया कि मान लीजिए किसी के चार पुत्र हैं और चार पुत्र को पिताजी ने चार कुर्ता भेजा, अगर एक पिता दो कुर्ता लेगा तो एक को तो घटेगा है कि नहीं, एक को नहीं घटेगा, घटेगा। तो ऐसा उदाहरण न देकर कि मैं उदाहरण दे दिया, मैं पहाड़ में कथा कर रहा है और मैं कह दिया कि मान लीजिए हमारे चार पुत्र हैं और हमने चार कुर्ता भेजा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई एक दो कुर्ता ले लेगा तो एक को तो घटेगा। मैं तो समझा रहा था, कथा खत्म हो गई। तो दो आदमी गली में से जा रहे थे, हम जिस घर में ठहरे थे उसी गली से वो पार कर रहे थे। तो एक कहता है, भाई आप कहते थे कि महाराज जी ब्रह्मचारी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे चार पुत्र हैं। और मैं डायरेक्ट सुन रहा था। तो दूसरा आदमी कह रहा था, वो अपने शब्दों में कह रहा था, नहीं नहीं परतोख दे रहे थे, वो परतोख दे रहे थे, मतलब नुकसान दे रहे थे। ना तुम्हें सुना नहीं, वो कह रहे थे कि मान लीजिए हमारे चार पुत्र तो मान लेने के लिए कह रहे। तो बाद में दूसरे दिन सवेरे इसका निराकरण करना पड़ा, ये प्रश्न हमारे पास पहुंचा। क्या आप पहले के विवाहित हैं, क्या आपके पुत्र हैं? मैंने मुझे ऐसा अपनी बात में कथा में कहा था, तो वैसे श्रोता मिल जाएंगे अच्छा समझाया जा सकता है। बुरी बात भी नहीं समझते। देहात्ममति और देह में आत्मबुद्धि, इसको विशेषर्ज त्याग दिए। इस प्रकार का प्रभाव होता है भगवदाश्रित का आश्रय लेने पर। राजा रहुगण का यह प्रभाव है। एवं हिंदू को भगवदाश्रित आश्रित अनुभाव। यह साधारण बात नहीं है कि आधा घंटा एक घंटा के प्रवचन से देहात्मबुद्धि निकल जाए। कई वर्षों तक इस बात को सुनते रहने पर भी नहीं मते निकल रही है कि नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडीज। यह हुआ, लेकिन थोड़ा भी अगर बॉडी में कोई टच कर जाए, कुछ कर दे, तो सांप जैसा क्रोध प्रकट हो। क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, आत्मा को क्या हो गया? तो हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन सारा कार्य शारीरिक प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। भूख लगना, प्यास लगना, सो जाना, आत्मा को नींद की क्या जरूरत, वो कथा में भी सो रहे हैं। हरि बोल, जगाइए उनको। आत्मा को नींद की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां कहते हैं, कथाकार कहते थे कि कथा में दो बहने आती हैं श्रोताओं के ऊपर, उसको भोजपुरी भाषा में कहते हैं झूठे झपड़ी, झपड़ी मतलब झपाया जाना निद्रा, और एक झूठी मुख। तो किसी पर निद्रा आ रही है, कह दीजिए कि आप सो रहे हैं, पहले तो निद्रा आएगी, झपैनी आएगी, उसको कहते झपैनी। झपैनी पहले निद्रा में डाल दे, जब पूछा जाए कि आप सो रहे हैं तो झूठने को लिखना, कोई नहीं कहता है कि हाँ कुछ नींद लग गए, कोई नहीं कहता है।